તારીખ 11/7/1992 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 197 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 46A.
ये वचनामृत का विषय वेद ज्ञान का है और समय सार के मोक्ष अधिकार में ये विषय चला है. मोक्ष अधिकार की प्रारंभ की गाथाओं में मोक्ष के कारणभूत ऐसा जो वेद ज्ञान है, जो ज्ञान दशा में एक प्रक्रिया रूप चलता है, जिससे बार बार अनुभव होता है और जीव मोक्ष तक पहुंचता है, पूर्णता तक पहुंच सकता है. इसलिए मुक्ति का कारण भूत ऐसा जो भेद ज्ञान, उस भेद ज्ञान का क्या महा विषय चला है. प्रज्ञा क्षणी को शुभाशुभ भाव और ज्ञान की सूक्ष्म अंत संधि में पटकना. प्रज्ञा मैंने ज्ञान की पर्याय, प्रज्ञा मैंने ज्ञान की पर्याय क्षणी की उपमा इसलिए दी है कि एक तो क्षणी की धार पैनी होती है, सूक्ष्म होती है, पैनी मैंने सूक्ष्म होती है. दूसरा, क्षणी से जो कठिन पदार्थ ऐसा लोहा है उसको भी काटने का एक काम होता है, टुकड़ा करने का काम होता है. ये दो मुद्दा पर यहाँ ज्ञान की पर्याय को क्षणी की उपमा दी गई है कि एक तो ज्ञान सूक्ष्म होना चाहिए और सूक्ष्म होकर वो राग और ज्ञान के बीच विभाग करें, भेद करें, विभाग करें. ये इसलिए उसको प्रज्ञा क्षणी कहा. प्रज्ञा मैंने ज्ञान की पर्याय. शुभाशुभ भाव और ज्ञान की सूक्ष्म अंत संधि में पटकना. प्रज्ञा क्षणी को मैंने ज्ञान की सूक्ष्म पर्याय को ज्ञान और राग की शुभाशुभ भाव जो राग रूप है उनकी सूक्ष्म अंत संधि में पटकना. अब यहाँ एक समस्या खड़ी होती है कि अंत संधि दिखे तो पटके ना. जिसको अपने भीतर में राग और ज्ञान की बीच में जो संधि है वो संधि नहीं दिखने में आती है तो प्रज्ञा क्षणी को कहां पटकेगा. संधि मैंने क्या है, जैसे अपने फ्लोरिंग में लादी होती है ना, मार्बल की है या मोज़ेक की है, तो दोनों के बीच में एक सांद होती है, वहां से उसको अलग करना आसान पड़ता है, अखंड चीज टूटती नहीं। लेकिन जहां सांद की हो वहां तो टूट सकती है। तो यहां ऐसे कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय और शुभाशुभ भाव की पर्याय, राग की पर्याय, दोनों जीव की अवस्था में बाजू बाजू में है, दोनों एक नहीं है। अज्ञानी को भी राग है सो ज्ञान नहीं, और उसका ज्ञान है सो राग रूप हुआ नहीं, कभी अज्ञानी का भी नहीं हुआ। फिर भी और दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, बीच में सांद कहाँ है, वो दिखने में नहीं आ रही है। दिखती है क्या? जब सांद दिखती नहीं तो प्रज्ञा श्री कहां डालेंगे? प्रज्ञा छैनी तो एक ज्ञान की पर्याय है। प्रज्ञा मैंने ज्ञान, छैनी मैंने सूक्ष्म ज्ञान। तो ज्ञान स्थूल है इसलिए वो संधि को नहीं देखता है। वस्तु मैंने क्या, ज्ञान में भेद, ज्ञान स्थूल है और विषय सूक्ष्म है, तो स्थूल ज्ञान सूक्ष्म विषय को पकड़ नहीं सकता। जैसे सर्प पकड़ने का जो साधन है वो मोती को नहीं पकड़ सकता, हीरे मोती को पकड़ने के लिए पिन पॉइंटेड शार्प पॉइंटेड वो चिपिया आता है, समाणी कहते हैं अपन, और सर्प को पकड़ने के लिए लकड़े का बड़ा आता है। अपेक्षित मैंने क्या, ज्ञान को स्थूल, हाँ 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 हाँ, ज्ञान स्थूल है इसका क्या कारण, और ज्ञान सूक्ष्म होता है उसका क्या कारण, अगर वो बात समझ में आ जाए तो ये प्रश्न है वो बराबर सॉल्व हो जाता है। तो ज्ञानियों ने इस विषय में बहुत स्पष्टीकरण किया है गुरुदेव ने, तो कि जिसको जड़ की रुचि है, उद्गल की रुचि है, पुण्य की रुचि है, अनात्म तत्व की रुचि है, राग की रुचि है, उस रुचि के कारण ज्ञान स्थूल हो जाता है। अपेक्षित का मतलब मैं नहीं समझता।
राग को अपना मन मानता है,
ज्ञान की पर्याय में भी वो दोष तो आया ना, ज्ञान स्थूल हुआ। दोष तो स्वयं का है, ज्ञान का दोष तो अपना स्वयं का है। जो ज्ञान दूषित हुआ वो तो स्वयं हुआ, किस कारण से हुआ ये इसका कारण वो तो क्या है कि एक गुण का परिणमन में दूसरा गुण का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ यह है कि निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त कुछ करता नहीं है, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वयं सूचित करता है। संबंध से देखो तो अपेक्षित है, बिना संबंध देखो तो निरपेक्ष है। कोई भी बात, कोई भी बात को अपेक्षा से पहले तो उनको निरपेक्ष देखो, फिर अपेक्षा करो, अपेक्षा ज्ञान से उनको समझो। अपने में योग्यता नहीं हो तो कुछ कोई कुछ कर सकता नहीं। उपादान कारण तो अपने आप का होता है हरेक को, इसलिए उपादान की योग्यता तो अपनी है। समझाने के तौर से फिर बगल में कौन सा संयोग था, कौन सा निमित्त था, ये समझाने के तौर से बताया जाता है। अपना तो विषय ये चल रहा है कि दो चीज बगल बगल में है, तो ये सफेद कलर है, ये हरा कलर है। भले ही लेवल इसका एक सा हो, लेकिन सफेद की मर्यादा पूरी होती है फिर हरा की मर्यादा शुरू होती है। हरापने में सफेद नहीं गया, सफेद में हरापन नहीं गया। ऐसे राग राग रहा, ज्ञान ज्ञान रहा है, ज्ञानी को अज्ञानी को सभी को। अब है बगल बगल में, दोनों बाजू बाजू में है, लेकिन दो बाजू बाजू में होने पर भी यहां राग की मर्यादा पूरी होती है, वहां ज्ञान, जहां ज्ञान नहीं है, जहां ज्ञान है वहां राग नहीं है, राग है वहां ज्ञान नहीं है। ऐसा भाव में दोनों के बीच में जो अंतर है सांध का, वो दिखे ही नहीं तो प्रज्ञा श्रेणी कहां डालेगा। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्यों नहीं दिखती है वो संधि, अंतः संधि उसको कहते हैं, अंतर की संधि है, अंदर की संधि है, इसलिए उसको अंतः संधि कहते हैं। क्यों नहीं दिखती है? कि इसलिए नहीं दिखती है कि ज्ञान स्थूल है, देखने वाला तो ज्ञान है, जानने वाला तो ज्ञान है, लेकिन वो स्थूल है तो सूक्ष्म भाव को नहीं ग्रहण कर सकती, सूक्ष्म चीज को नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, उतना स्थूल है। क्यों स्थूल है, स्थूल क्यों हुआ? हम ये कहेंगे कि वो जीव है, वो पर रुचि ज्यादा कर रखता है, तो इसलिए उनका ज्ञान स्थूल हो जाता है ऐसे विषय में। अगर इनकी रुचि ऐसी नहीं है और आत्मरुचि में वो आता है तो उसका ज्ञान सूक्ष्म होता है। आखिर का पैराग्राफ पढ़े अपन। 197 पृष्ठ संख्या 73 आखिर का पैराग्राफ पढ़े। आखिर की पंक्ति पढ़े। ऐसा नहीं होता कि पर में तीव्र रुचि हो और उपयोग अंतर में प्रज्ञा छेनी का कार्य करे। लिखा है बेंच अंतिम वचन। ऐसा नहीं होता है कि पर में तीव्र रुचि हो जीव की और उपयोग अंतर में प्रज्ञा छेनी का कार्य करे। ऐसा कभी बन सकता नहीं। हाँ तो उपयोग स्थूल हो जाएगा। उपयोग स्थूल हो जाएगा और जिसको आत्मस्वरूप की भावना हो, स्वरूप प्राप्ति की भावना हो, स्वरूप की रुचि हो, तो अपने भीतर में वो अवलोकन करने वाला ज्ञान, राग और ज्ञान दोनों के बीच में अंतर है, एक साथ होने पर भी संधि है। गुरुदेव के शब्द में कहे तो निसंधि नहीं हुआ है। क्या अपने गुजराती में एक कहवत है, सांधा इटला वांधा। शू के सांधा इटला वांधा, इटले शू कि कोई भी मजबूत चीज तोड़वी हो, किसी भी मजबूत चीज को तोड़नी हो तो उसको कहीं भी ज्वाइन किया हो वहां से तोड़ो। जैसे लोखंड को वेल्ड किया हो वहां से तोड़ सकते हैं, गर्डर होता है, जॉइंट किया हो तो वेल्डिंग से तोड़ो तो जल्दी से टूटेगा, लेकिन पूरा गर्डर को, अखंड गर्डर को तोड़ने जाएगा तो बहुत ताकत पड़ती है, ऐसे नहीं टूटता है। तो ऐसे राग और ज्ञान निसंधि मैंने अखंड नहीं है। ज्ञान ने जुड़ाव किया है, जोड़ान किया है राग के साथ, ये मैं हूं, राग मैं हूं, मैं रागी हूं, ऐसा ज्ञान में भाव होता है। आत्मा में होता है या ज्ञान में होता है कौन? अब जैसे ये दो कलर उतना परस्पर उतना अलग प्रकार का है कि वो तो अलग ही अलग दिखे, सफेद भरा दिखे नहीं, हरा सफेद दिखे नहीं, काला सफेद दिखे नहीं, सफेद काला दिखे नहीं, वैसा ही उसमें है कि दोनों का स्वभाव, दोनों का अनुभव बहुत अंतर वाला है। जैसे ज्ञान में जानने का स्वभाव है और राग में नहीं जानने का स्वभाव है। क्या राग है सो अंधा है। जैसा एक जड़ परमाणु कुछ नहीं जानता वैसा ही राग कुछ नहीं जानता। इसलिए तो समय सारादि अध्यात्म शास्त्र में राग को जड़ भी कहा है। यही जड़ कहने का कारण है कि जड़ के साथ वो भाव ऐसा सदृश होकर परिणमता है जीव का कि जड़ जैसा वो हो जाता है उस तरफ। तो उतना अंतर है दोनों भाव में, फिर भी पर की रुचि में, अनात्म तत्व की रुचि में, ज्ञान में उतनी स्थूलता हो गई है के उपयोग दोनों के बीच में अंतर है उसको देख सकता नहीं है। तो अपन तो शास्त्र पढ़ेंगे तो वचन तो पहले यहाँ से चालू हुआ कि प्रगणा छेनी को शुभाशुभ भाव और ज्ञान की सूक्ष्म अंतर संधि में पटकना। तो सिर्फ शब्द का अर्थ करना है या कोई काम करना है? शब्द का अर्थ तो ये कि प्रगणा छेनी, मैंने ज्ञान को सूक्ष्म पर्याय को यानी अंतर्मुखी ज्ञान की पर्याय को राग और ज्ञान के बीच में पटकना। लेकिन वो कैसे, वो प्रज्ञा ज्ञान की पर्याय ऐसे सूक्ष्म कैसे होती है और अंतर संधि दिखती है कि नहीं दिखती है, ये सवाल है। जब दिखती नहीं है तो ज्ञान स्थूल है, प्रज्ञा छेनी भी नहीं है ना अंतर संधि भी दिखती है, तो ये तो एक बात रह गई या बात हो गई, बात से तो काम चलने वाला नहीं। इसलिए जब ऐसा विषय सामने आता है तब हमें मुमुक्षुओं को अपने आप में कुछ इस विषय की तैयारी करनी पड़ती है कि हमारे काम में ये चीज कैसे आ सकती है। हमारा ज्ञान को हम किस तरह सूक्ष्म करें और भीतर में ज्ञान और राग में के बीच में अंतर संधि है उसको देखें कैसे। जब देखेंगे नहीं तो कहां ज्ञान को पटकना है छेनी को, वो तो कोई अपने निशानी नहीं है अपने पास, न छेनी भी है न छेनी के पटकने का स्थान है। इसलिए कहते हैं आगे कि उपयोग को बराबर सूक्ष्म करके, क्या ये ज्ञान को छेनी बनाया, उपयोग को बराबर सूक्ष्म करना वो ज्ञान को छेनी बना दिया, क्योंकि छेनी पैनी होती है, सूक्ष्म होती है धार वाली। तो उपयोग को बराबर सूक्ष्म करके उन दोनों की संधि में सावधान होकर उसका प्रहार करना, ऐसी भाषा क्यों ली है? प्रहार करना, मारना, प्रहार करना, डालना, ऐसी भाषा क्यों ली? ये पुरुषार्थ सूचक परिभाषा है। ऐसा काम बिना पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ माने क्या? कि पुरुषार्थ माने एक वेग से काम होता है, जोर से काम होता है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। जहां वेग हो, आवेग हो, जोर हो, ये पुरुषार्थ की पर्याय का एक चिन्ह है, लक्षण है देखने का। तो ये काम थोड़ा जोर से होगा ऐसा कहते हैं। भेद ज्ञान बिना पुरुषार्थ नहीं होता। क्या अधिकार तो भेद ज्ञान का चलता है ना? तो भेद ज्ञान पुरुषार्थ समेत ही चलता है, बिना पुरुषार्थ भेद ज्ञान होता नहीं कभी। सात पुरुषार्थ ले लिया ऐसा कह करके यहां पुरुषार्थ को समझाया है। वो तो दो बात को सूचित करता है कि एक तो काम करने की रुचि नहीं है और दूसरा उनको अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है इसलिए उनकी नीयत भी अच्छी नहीं है। क्या? उसकी नीयत भी अच्छी नहीं है। जैसे कोई पैसा नहीं देता है तो नहीं देना है ऐसा नहीं कहेगा, जिसको पैसा नहीं देना है वो क्या नहीं देना है ऐसा कभी नहीं भूलेगा, वो आज तो नहीं दूंगा। तो कब दोगे भाई साहब? आज आप नहीं दोगे, मेरे गाय के पैसे हैं, माल दिया है उसको पैसा लेना है, आज नहीं दोगे तो कब दोगे? तो कि कभी ना कभी तो दूंगा, कभी मैंने कब देंगे? तो वो नहीं कह सकता मैं, वो मैं बता सकता नहीं। फिर भी ज्यादा जोर डाला तो कोई ना कोई वायदा मिल जाएगा, तो इसके पहले तो वो जाएगा नहीं, वायदा पर जाएगा तो अभी नहीं, क्या बोलेंगे? अभी नहीं। अभी नहीं का मतलब कभी नहीं क्या? अभी नहीं का मतलब क्या हुआ वहां? इसका मतलब कभी नहीं, नियति नहीं है इनकी, ये बात है। तो इसलिए अभी नहीं करूं, पीछे करना है, पीछे करूंगा, पीछे करूंगा। उनको नहीं पता है, वो ज्ञानियों को पता चल जाता है कि उसका नियत क्या है। उनको तो बेचारे को पता ही नहीं है कि वो क्या कहता है, उनका नियत क्या है। वो तो उतना झांक करके देखे तब तो पता चले ना, उनको तो कोई अंतर में देखने का फुर्सत ही नहीं है कि वो क्या देख हो रहा है भीतर में। लेकिन उनकी अरुचि और नियत है वो प्रसिद्ध हो जाती है कि अभी नहीं में क्या चीज है ऐसा। जोर नहीं आता है, इसका कारण क्या है कि उसमें जो होने वाला लाभ है वो दिखने में नहीं आया, समझने में नहीं आया। जहां भी लाभ नुकसान हो वहां जोर आए बिना रहेगा नहीं। हैदराबाद से कलकत्ता तक क्यों जाते हैं? लाभ मिलता है तो जाते हैं ना, खरीदी के लिए जाते हैं है? लेकिन जितनी दफे कलकत्ता जाते हैं उतनी दफे है? जाते हैं क्या? नहीं है? अपने बारे में नहीं दिया कहते गुलाब भाई सोनगढ़ नहीं आते, क्या कारण होगा? ऐसी बात है कि जहां लाभ दिखे वहां जाने का उत्साह, वेग, जोर आए बिना रहेगा नहीं। कहीं भी जाना हो, हम तो ये कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां नहीं गया, नहीं जाकर के ठहरा नहीं है और अपना वो कोई व्यवसाय नहीं करता हो, ऐसा कोई देश नहीं है। जहां हम आवागमन करते हैं 250 देश हैं इस विश्व में, कितने छोटे मोटे टापू बाबू हैं ना सब जगह। जहां समुद्र में एक टापू है, देश में कोई नहीं है, एक टापू सिटी है या टाउन है, वहां भी हिंदुस्तान का लोग गया है। क्यों? और अपन भी हैदराबाद के थोड़े हैं, अपना वतन तो हैदराबाद नहीं है, आपका गड़ा है तो आपका माखानेर है तो आपका कहीं और कच्छ का है कि और कहीं जगह का है ना? क्यों क्यों इधर आए? लाभ देखा तो इधर आए। तो ऐसे ये देहार्थ के लिए हम प्रवृत्ति करते हैं। किसके लिए करते हैं? देहार्थ के लिए करते हैं ना। और ये पक्षी है उड़ करके 1500 मील 1000 मील जाता है, एक देश से दूसरा देश में जा, क्यों जाता है? वो भी देहार्थ के लिए जाता है। क्या अंतर है इसमें? अकेले देहार्थ की ही प्रवृत्ति करना तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है बताइए। वो भी अपने परिवार को खिलाता है, वो भी अपने परिवार को खिलाना पिलाना तो वो भी समझता है, क्या अंतर रहा? आत्मार्थ के लिए हमने कितना परिश्रम किया कि कहीं भी हमें सत्संग मिलता हो तो कैसी भी हालत में हमें जाना है, इतना आत्मार्थ के लिए हमारा जोर आना चाहिए, जभी तो कुछ मिल सकता है। तो यहाँ जो भाषा है उसमें अपने आत्मलाभ के वशात हम राग को मिलावे नहीं, राग को राग रूप और ज्ञान को ज्ञान रूप अनुभव में रखे, विचार में नहीं रखे। क्या हर बात हम विचार की मर्यादा में रख करके कैद कर लेते हैं, विचार की कोठड़ी में, बात शब्द से वचन से समझ में लेते हैं, उसके पर थोड़ा ज्यादा जिसकी जितनी शक्ति हो उतना विचार करते हैं, बस बात खत्म हो गई, विचार में उसको कैद कर लेते हैं। कर सकते हैं, वो तो अपने को विषय चलाना है, यही तो बात करनी है, यही विषय एजेंडा पर है कि हम ये कार्य कैसे करें। भले ही हमें सम्यक ज्ञान नहीं है, फिर भी सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने का कारण तो भेद ज्ञान है, स्वरूप निश्चय भी भेद ज्ञान का प्रयोग होने से होता है और अनुभव भी भेद ज्ञान से होता है, और जिसको अनुभव हुआ उसको बार बार अनुभव भी भेद ज्ञान से होता है। क्या भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये कि लकेचन, जो भी सिद्ध हुए ना वो भी भेद ज्ञान से हुए हैं, तो कार्य पद्धति कहीं बदलती नहीं, प्रारंभ से लेकर अंत में सिद्ध पद की प्राप्ति हुए वहां तक कोई कार्य पद्धति बदलती नहीं, तो कितना सुविधा हो गई कि कार्य पद्धति बदलनी नहीं है हमें। एक कार्य पद्धति अगर हमें सीखने में आ गई तो फिर उस कार्य पद्धति को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सुविधा है इस मार्ग में। अच्छा, अब भेद ज्ञान है ये सिर्फ विचार विकल्प नहीं है, क्या भेद ज्ञान है कोई मात्र विचार विकल्प नहीं है, भेद ज्ञान स्वयं प्रयोग रूप है। क्या प्रयोग रूप है? और प्रयोग में आचरण का अधिकार है, आचरण का भी अधिकार है और ज्ञान की प्रवृत्ति का भी अधिकार है, तो प्रवृत्ति को ही आचरण कह सकते हैं, और अधिक सरल भाषा में कहें तो प्रयोग वो चीज है कि जो हमारी समझ है उसको हम परिणमन में लागू करने की कोशिश करें। जैसे हम समझ करते तो थियरी हमको समझ में आ जाती है, जैसे कार ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले हमको समझाते हैं ना कि भाई ये एक्सीलेटर है, यहाँ से आपको दबाने से ही पेट्रोल छूटेगा अंदर में, और ये जो है वो गियर है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर, जहाँ जितनी स्पीड बढ़ती है आगे गियर को बदलना पड़ता है। तो गियर के साथ जो क्लच है वो व्हील को फ्री करना और पकड़ना, गियर में डालना और गियर से फ्री कर देना है, तो ये क्लच को दबाना पड़ता है। स्पीड, किसी भी स्पीड में स्पीड को रोकना है तो ये ब्रेक है हमारे पास। सारी थियरी हमको पहले तो दिमाग में समझ में आ जाती है कि किस किस पॉइंट पर हमें क्या क्या करना है, किस तरह से काम करना है, और फिर हमारी समझ को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल क्या चीज है कि टू अप्लाई द थियरी इन प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। तो हम जो समझते हैं, जो शास्त्र हम समझने को बैठते हैं, उसमें थियरी तो हमारी समझ में आते हैं, लेकिन वो भावों की तो बात है। ज्ञान भी एक आत्मा का भाव है और राग भी तो एक आत्मा का भाव है। उन भावों में हमारी समझ को हम लागू कर दें, जो हम समझ में आई वो उस बात को वहां लागू करें, तब तो ये बात प्रैक्टिकल हो जाएगी, प्रयोग की हो जाएगी। और लागू नहीं करेंगे तो सिर्फ ये याददाश्त का विषय रह गया, विचार का विषय रह गया। तो प्राय हमारे जो मुमुक्षु समाज है उसमें एक आदत बन गई है कि बात को हम समझ लेते हैं, दिमाग है हमारे पास समझने के लिए, बुद्धि है, हम बुद्धि को लागू करके बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, समझ में ले लेते हैं, फिर उसको लागू नहीं करते। समझ में लेने पहला कोई अनुभव होता है वो तो सवाल ही नहीं है, लेकिन समझ में आया तो राजी हो गए हम, क्यों कि पहले समझ में नहीं आता था। कई साल तक हमारी ऐसी परिस्थिति थी कि बात ही हम समझ नहीं सकते थे, फिर ज्यादा अभ्यास होने से, बार बार सुनने से, विचार करने से, प्रश्न पूछने से बात समझ में आती है तो हम राजी हो जाते हैं, चलो समझ में आ गई हमारे बात। तो समझ में आ गई इसका मतलब कोई ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो बात नहीं है, ऐसा नहीं है। उस समझ का उपयोग जब होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे अपन एक दृष्टांत ले लेवे कि जगत में कोई चीज अच्छी भी नहीं और कोई चीज बुरी भी नहीं है, क्या कोई अच्छी बुरी कोई चीज तो नहीं है, लेकिन हमें जब अच्छी लगती है, कोई चीज हमें अच्छी लगी, तब हमारी वो समझ हमें लागू करनी चाहिए कि क्यों अच्छी लगी। हम तो वो समझ चुके हैं कि कोई अच्छी बुरी चीज ही नहीं है, फिर अच्छी क्यों लगी। तो हमारी समझ और हमारा लगना, उसमें विरुद्धता पैदा हुई कि नहीं हुई। हमारी समझ तो यह कहती है कि कोई चीज अच्छी बुरी नहीं, और हमें एक चीज अच्छी या बुरी लगती है। तो समझ और लगना दोनों में तो विरुद्धता हो गई। वो विरुद्धता तोड़ने के लिए हमारे पास कौन सा साधन है, क्या पुरुषार्थ है, कौन सा प्रयोग है। ऐसा इस विषय के भीतर में जाकर के कोई कोशिश हम करें तो समझ का सही उपयोग होवे। लेकिन समझ समझ के स्थान में रह जाए और दुकान पर जाकर के दूसरी बात हो जाए। समझ तो तिजोरी में कोठरी में कैद करके चाबी लगा दी, बात खत्म, चाबी फेंक दी, समझ को खो दी। ये काम तो कोई समझ का उपयोग नहीं होने से काम आगे बढ़ने वाला नहीं है, कोई इसका लाभ मिलने वाला नहीं है, मैंने शांति नहीं मिलेगी। ये काम तो शांति पाने के लिए है, जीव को सुख शांति कैसे मिले यही तो इसका उद्देश्य है। अगर कोई उद्देश्य है हमें इतना परिश्रम करने का इस विषय में, तो उतना ही है कि हमें जहाँ सुख शांति मिलने का कोई रास्ता ही नहीं है जगत में, तब सुख शांति कहाँ से कैसे मिलती है इसका एक विज्ञान है, परिज्ञान है, वो हम समझते हैं लेकिन समझ का उपयोग नहीं करते हैं, तो बात मौकी वो रह जाती है, उतना ही दुखी हो जाते हैं जितना दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये भेद ज्ञान है वो एक प्रयोग है, सिर्फ विचार विकल्प नहीं है, ये मूल बात है भेद ज्ञान की। अगर ये बात हमारे ध्यान में नहीं हो तो भेद ज्ञान का विषय हम पढ़ करके अर्थघटन कर लेंगे कि हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ज्ञानियों ने ऐसा कहा है, इसका अर्थ ऐसा होता है, लेकिन वो अर्थ शब्द और इसका अर्थ शांति देने वाला नहीं है। शब्द का अर्थ समझने से कोई शांति नहीं मिलती, शांति तो उसका उपयोग प्रयोग होने से मिलती है। इसलिए हमें इसके अनुभव पद्धति में आना पड़ेगा, इसका अनुभव कैसे करें। तो राग भी अनुभव में आने वाला भाव है और ज्ञान भी जीव को अनुभव में आने वाला ज्ञान है। सुबह भी वही विषय चलेगा, वहां भी 17-18 गाथा में भेद ज्ञान का विषय दिया है, उधर भी यही विषय चल रहा है, अधिकार ये मोक्ष का है, ये जीव का अधिकार है, लेकिन दोनों अधिकार में सभी अधिकारों में भेद ज्ञान का विषय चला है। और आचार्य महाराज की क्षमता समझाने की बहुत है, तो उन्होंने तो समझाने का तरीका अलग अलग कर लिया है एक ही बात को समझाने के लिए। वास्तव में ये भेद ज्ञान से ही अनुभव होता है। सुगानी जी को क्या हुआ, क्या समझे वो गुरुदेव के प्रवचन में सारभूत बात क्या समझे, समझे कि ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्न भिन्न कैसे कि उसका अनुभव भिन्न होता है। जो राग का अनुभव है वो ज्ञान का नहीं, ज्ञान का अनुभव है वो राग का नहीं। टेस्ट करना पड़ता है, नहीं इसका टेस्ट चालू है, हमारा ध्यान नहीं है वहां, लक्ष्य नहीं है। दोनों भाव तो अनुभव में आ रहा है, एक समय भी ऐसा खाली नहीं जाता कि जिसमें दोनों भाव का अनुभव नहीं हो। कभी ज्ञान रुकता है क्या परिणमन में, कभी राग बंद हो जाता है क्या परिणमन में, कि नहीं दोनों चल रहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है कि क्या अनुभव हो रहा है। हाँ, पर लक्ष्य है हमारा, महालक्ष्य नहीं है, इसका मतलब कहीं और जगह हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं होने से हमारा, हमको पता नहीं चलता। जैसे आपका लक्ष्य कहीं और जगह चला गया तो आपने सुना नहीं मेरी बात, कान का पर्दा तो खुला है, उसके तो कोई ढक्कन होता नहीं, आंख को ढक्कन है, कान को तो है ही नहीं, फिर भी लक्ष्य नहीं है तो बात सुनने में नहीं आएगी। ऐसे लक्ष्य नहीं है, उसको क्या अनुभव हो रहा है उसका पता नहीं चलता। जैसे कोई टेंशन में आता है आदमी, घर में अच्छी से अच्छी चीज बनाई हो और घर वाले को भी पता है कि उनको ये चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भाई साहब टेंशन में है, खाने को बिठाया तो बिठ बैठ गए, खा भी लिया तो खाते खाते बात नहीं किया कोई, तो फिर घर वाले तो पूछेंगे कैसा लगा, तो मेरा ध्यान नहीं था। हाँ, कोई चिंता में डूबे हुए, क्या कोई चिंता में लगे हुए हैं, टेंशन में है, तो खाने में ध्यान नहीं है, कैसा स्वाद आया पता नहीं चला, बनता है कि नहीं बनता है। गुरुदेव ये कहते थे कि अगर कोई शक्कर को मुंह में रख कर के बोले कि शक्कर मीठी कैसे लगती है हमें समझाओ, उसको हम क्या समझाएंगे। जिसके मुंह में शक्कर हो, जीभ पर शक्कर रखे हो, जो स्वाद लेने का अंग है, और फिर वो पूछे कि शक्कर मीठी है ऐसा सभी लोग कहते हैं और मैं भी समझता हूं, लेकिन मीठी कैसी लगती होगी आप समझाइए, क्या उसको समझाना। यही हमारी हालत है, अनुभव करने की शक्ति आत्मा में है। आस्वाद लेना या अनुभव करना एक ही बात है, और पर्याय भी हमारे परिणमन की चीज है। फिर उसका स्वाद कैसा आता है हम हमारे गुरु को पूछने को जाएंगे, ज्ञानी को पूछने को जाएंगे, शास्त्र को पूछने को जाएंगे, कौन जवाब देगा। होमवर्क क्या, अभी पर्यूषण में कौन सा विषय चलाना है उसकी तैयारी नहीं करते हैं, हमें आगे से करते हैं क्या। पंडित जी आएंगे, जो भी पढ़ेंगे हम सुनेंगे, चलो ऐसा नहीं। हमें इसमें से कुछ माल लेना है तो अच्छे से अच्छी तरह ज्यादा से ज्यादा माल ले सके, इसकी पूर्व तैयारी तो अपनी होनी चाहिए ना। मैं तो प्राय कहीं भी जाता हूं पहले ये पूछता हूं कौन सा शास्त्र पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक यही उत्तर मिलता है कि जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आप पढ़ेंगे हम सुनेंगे। सरल है या दरकार नहीं है, क्या बात है असल में, क्या बात है। हमको क्या अनुकूलता की बात है, कहीं भी तत्व तो जो तत्व है कहीं से भी तत्व की बात ही चलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुछ तैयारी नहीं करते हैं, वो बात छिपाने के लिए कुछ बात करनी पड़ती हो, ऐसा तो कहीं नहीं है ना। तो असल बात तो करो ना? असल बात को छुपाते कैसे हो, ये बात है। जैसे हमें गुरुदेव मिला तो हमें पीछे पड़ जाना चाहिए कि जितना ज्यादा अनुभव करके बैठे, विषय की गहराई में बहुत गए, तो हम उनके पेट में से, उनके हृदय में से कैसे कैसे माल निकाले, ये तो हमारी कोशिश होनी चाहिए ना। गए कभी गुरुदेव के पास हैं, उनकी प्राइवेट चैम्बर में जाना चाहिए। कोई अपने भी बिजनेस की कोई खास बात हो तो अगले की चैम्बर में जाते कि नहीं जाते, कि दूसरा कोई सुने नहीं, अकेले बात होवे, हमारी बात लिकआउट हुए नहीं कहीं और हमारा काम बन जाए। वैसे ये तो बहुत भारी चीज है, बहुत कीमती चीज है, लोकोत्तर चीज है, कहीं लोक में मिलती नहीं हर जगह। कोई ऐसी चीज लेनी है तो उसके उसके पीछे लगना पड़ता है। जब तो कोई काम होता है, हमारी तैयारी नहीं हो तो काम कैसे बनेगा। जिसको भूख नहीं है, लीवर बिगड़ता है ना, ये क्या होता है, पीलिया हो जाता है, हाँ तो है, हाँ जॉन्डिस जिसको कहते हैं ना, तो उसको भूख नहीं लगती आदमी को। लीवर खराब होता है तो भूख नहीं लगती है, फिर उसको अच्छे से अच्छा खिलाने को, भारी से भारी खुराक है, मैसूर खिलाओ, हलवा खिलाओ, कोई खाना नहीं है ना, ऐसा करेगा, कोई खाना नहीं है। क्यों? कहीं हमारी ऐसी हालत तो नहीं हो गई कि अच्छे से अच्छा माल गुरुदेव खिलावे लेकिन हम नहीं खाते हैं, इसका कारण क्या है? है? पचाना क्या, खाने का ही तैयारी तो होनी चाहिए ना, खाएंगे बाद में पचाएंगे ना, खाते ही नहीं तो पचाने का क्या सवाल होता। ऐसी बात, इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तैयारी नहीं हो तो कोई काम होने वाला नहीं है। भेद ज्ञान इस तरह से उत्साह जिसको होवे कि हमें हर समय भेद ज्ञान करना है। जो ज्ञानियों का जीवन है, परिणमन है, वो निरंतर होने वाला चीज है। अभेद ज्ञान भी निरंतर होता है ना, राग और ज्ञान का अभेद परिणमन भी निरंतर चलता है, नुकसान भी इनका निरंतर चलता है और भेद ज्ञान भी निरंतर चलना चाहिए। तो निरंतर चलने के लिए थोड़ा थोड़ा चालू कर देवे फिर आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन चालू नहीं करे तो ये तो एक बात रह जाएगी और बातों से पेट नहीं भरता किसी का, ये बात हो जाएगी। प्रयत्न तो ऐसे, जरूरत लगती है तो प्रयत्न होता है, बिना जरूरत तो कोई काम होने वाला नहीं है। एक दुकान पर 10 ग्राहक लगता है ना, ग्राहक तो जिसको हमें लगता है कि वो खरीदने वाला है, वो तो सिर्फ भाव पूछने को आया है, तो हम उसके मुंह भी नहीं देखते, क्या करते हैं, परिश्रम उतना नहीं करते कि उसका शकल देखें, हम उतना भी परिश्रम नहीं करेंगे। हम ऐसा हमारा जीव स्वभाव है कि जहां हमें जरूरत लगे हमें कितना भी परिश्रम करना मंजूर है, जहां हमें जरूरत नहीं लगे हमें थोड़ा भी परिश्रम नहीं करना है। ये बहुत स्वाभाविक चीज है जीव के परिणमन में, तो बुद्धिगम्य होने से कोई काम नहीं होगा। जरूरत लगनी चाहिए, ये बात है, जरूरत लगे तो काम सहज चालू होगा, जरूरत नहीं लगे तो बात तो समझ में बुद्धिगम्य कर लेंगे और आयु वैसे ही बह जाएगा। बहुत लिमिटेड है चीज अपने पास, ऐसे ही चला जाएगा। जरूरत लगे तो बुद्धिगम्य अच्छी तरह होगा, और बुद्धिगम्य ही नहीं होगा उसका प्रयोग चालू हो जाएगा। अगर जरूरत नहीं लगी तो बिना जरूरत तो ये जैसे कोई मिठाई खाने का दिल नहीं होता, ये बात हो जाएगी, सुन लेंगे बात पूरी होगी।
जा रहा है तो उसका कारण यही होगा कि
यही है, यही कारण है कि उसका लाभ है, उसकी जरूरत हमें नहीं है, यही कारण है।